ओम शांति, ओम शांति। हम अभी गीत सुन रहे थे। हम बहुत खुश नसीब हैं बाबा के बच्चे। हम सब क्योंकि स्वयं खुशियों के सागर के बच्चे हैं, जिसने हमें ये संगम युग मौजों की जीवन दी है। तो हमारी खुशी का आधार कौन है? हम सब बाबा के बच्चे खुश नसीब हैं, सदा खुश रहते हैं। सदा पहले तो खुश रहते हैं, खुश रहते हैं जो समझते हैं हम सदा खुश रहते हैं। जब से बाबा मिला सदा खुश रहते हैं, वो हाथ उठाओ। अरे वाह, ये तो बहुत मेजोरिटी है, तब तो सभी को मुबारक हो। तो हमारी खुशी का आधार बाबा है, पर वैसे कहेंगे दुनिया के हिसाब से हेल्थ वेल्थ है। अगर हम स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, तो खुश रहते हैं। और यदि वेल्थ है, यानी जितना धन हमें चाहिए, जो संपत्ति हमें चाहिए, वेल्थ है माना, यदि वो सब हमारे पास है तो हम खुश रहते हैं। जैसे जो बीमार होता है, रोगी होता है, वो दुखी हो जाता है, उसकी खुशी गुम हो जाती है। और ऐसे ही जो गरीब होता है, उसके जीवन में भी बहुत कष्ट होते हैं। जिनको संपत्ति नहीं होती, पैसे की कमी होती है, तो वो भी दुखी रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। और तीसरी बात आती है हमारे संबंध। अगर हमारे संबंध अच्छे हैं, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, संबंधों में ही रहते हैं, तो जो संबंध हैं, यदि वो हमें सुख देने वाले हैं, वो हमें प्रेम करने वाले हैं, तो हम खुश रहते हैं, है ना? तो दुनिया में मन पसंद प्राप्ति होती है, जो हम चाहते हैं वो हमें जीवन में मिलता है, तो खुशी है। और जो हमने चाहा वो नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं, मन उदास हो जाता है, कई बार टेंशन में भी आ जाते हैं, चिंता में भी आ जाते हैं। तो मन पसंद प्राप्तियों में हम जहां जाना चाहते हैं वहां हम जा सकें, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जो व्यक्ति हमें पसंद है उसके साथ हम दोस्ती करें या उनके साथ हम रहें, वो मनपसंद व्यक्ति प्राप्त हो जाए तो हम खुश हैं। और अगर हम कोई नाम मान शान की सेवा करना चाहते हैं, मतलब काम करना चाहते हैं, जैसे दुनिया में लोग चाहते हैं कि हमें वो सफलता मिले, वो नाम मिले, तो वो मनपसंद सफलता मिल गई, वो नाम मिलने वाला काम मिल गया, उससे हमारा मान बढ़ गया, तो हम खुश हो गए। तो ये है अल्पकाल के आधार। ये जरूर खुशी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। ब्राह्मणों में भी ऐसा है, भले ही बाबा हमारे लिए सर्व प्राप्ति का आधार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम भी बेहद से कई बार इन हद की अल्पकाल की प्राप्तियों में चले जाते हैं कि ये प्राप्ति मुझे हो रही है तो मैं खुश हूं, और इसमें अगर थोड़ी कमी आ गई तो हम भी बाबा से शिकायत करने लगते हैं, क्योंकि बाबा मेरा है, बाबा हमारा है, तो फिर हम तुरंत बाबा से फरियाद भी करने लगते हैं कि बाबा ऐसा हो जाए। जैसे हम भक्त थे पहले, तो भगवान के सामने जाकर अपनी मनपसंद इच्छाएं, मेरी पूरी कर दे बाबा, बाबा या भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, करते थे ना, मन्नत मांगते थे भगवान से, तो ये पूरा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो फिर हम ज्ञानी भक्त बन जाते हैं थोड़ा सा, कि बाबा ये हम सेवा कर रहे हैं, या ये हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना हम योग कर रहे हैं, तो बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, और जब पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो ये हमारी खुशी है। बाबा कहता है, क्या कहेंगे, जरूर खुशी, अगर ये सब मिल रहा है तो हम खुश हैं, वो सही है, लेकिन ये मेरा आधार नहीं होना चाहिए। बाबा हमें ये कहते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों के सामने भी वो समस्याएं आती हैं जो दुनिया वालों के सामने आती हैं। कई बार ब्राह्मणों के सामने शायद दुनिया वालों से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि हम दुनिया की जो धारा है उससे थोड़ी दिशा बदल लेते हैं, हमारी दिशा बदल जाती है। तो फिर जब वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तब क्या मेरी खुशी गुम हो जाती है? जो प्राप्तियां हैं हम बाबा के बच्चों को, स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही हमारा हो गया, स्वयं रचयिता ही हमारा हो गया, तो सर्व खजाने बाबा के हमारे हैं। जो भी प्राप्तियां हैं, ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, और भी जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए, वो सब खजाने हम बाबा के बच्चों के हैं। इसीलिए कहा कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। क्या कहेंगे, या ऐसे कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के जीवन में, ना कि ये सब प्राप्तियां तो हमें कब होने वाली हैं, सतयुग में होने वाली हैं कि अभी भी हैं? क्या कहेंगे, अभी भी हैं। तो इतनी बेहद की प्राप्ति है, बाबा कहता है, क्योंकि बीज स्वयं इस सृष्टि का जो बीज है वो बीज ही हमारा है, तो वृक्ष तो है ही है। तो वो बेहद की प्राप्ति के स्मृति स्वरूप बनना, केवल सुनकर खुश नहीं होना, बाबा कहता है जब उसके हम स्मृति स्वरूप रहते हैं कि क्या प्राप्तियां हैं हमारी जीवन में भी, दुनिया में भी, जैसे कहा कि जब प्राप्ति होती है तब खुशी होती है, और यहाँ तो सदा काल की प्राप्ति, अल्पकाल की प्राप्ति नहीं है कि भाई जब तक सफलता मिली उस समय खुश हो गए, बाद में कोई समय हुआ थोड़े असफल हो गए तो दुखी हो गए, किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो खुश हो गए, 2 घंटे के बाद किसी ने मेरी निंदा कर दी तो दुखी हो गए, अभी प्रॉफिट हो गया, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, प्रॉफिट हो गया तो खुश हो गए, थोड़े दिनों के बाद बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ धन की ऊपर नीचे हो गई तो ये नहीं। ये जीवन का आधार अगर हमने भी बना रखा है तो हमारी भी स्थिति सदा खुशी, सदा हलचल में आती रहेगी, सदा की खुशी नहीं रहेगी। तो बेहद की प्राप्तियां जो बाबा ने दिए हैं, हद की प्राप्तियों में नहीं, लेकिन जो बेहद की प्राप्तियां हमें मिली हैं, उन प्राप्तियों की स्मृति में रहना है। और बाबा कहता है वो इतनी है कि आपकी 21 जन्म आने वाले जो 21 जन्म है वो तो है ही है, उसके अलावा जो आपकी प्रजा होगी वो प्रजा भी उन प्राप्तियों के आधार से चलेगी, आपकी प्रजा की भी प्रजा होगी वो भी, फिर जो भक्त होंगे आपके, क्योंकि सभी देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, सभी देवी देवता बनने वाले हैं, या किसी को शक है कि पता नहीं हम देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम पूज्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जितने भी देवी देवता बनने वाले हैं वो सबके भक्त भी हैं, तो वो भक्त भी उन प्राप्तियों के आधार से चलते रहेंगे। और 3/4 बाबा कहता है इस सृष्टि चक्र में सुख है, अभी थी 2-3 दिन पहले मुरली थी कि सृष्टि चक्र में 3/4 सुख है और सिर्फ 1/4 लास्ट में आकर के थोड़ा दुख होता है। बाबा ने कहा अगर आधा आधा हो जाए तो फिर उसका मजा नहीं रहेगा। तो ये इतना लंबा समय तक हम सर्व प्राप्तियों के अनुभवी रहे, सर्व भाग्य हम आत्माओं को प्राप्त रहे हैं, तो इन देहत की प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बनेंगे, तो फिर अगर थोड़ी सी जो हमारी हद की प्राप्तियों में कम ज्यादा हो भी गया तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। तो वो हद की जो प्राप्तियां हैं वो हमें हलचल में फिर नहीं लाएंगी, पर हलचल में तो आते हैं। तो उसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान का खजाना जो बाबा ने हमें दिया है, जिसके लिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। ज्ञान सुनते हैं उस समय खुशी होती है, लेकिन केवल सुनने तक नहीं, उसको बार बार स्मृति में लाना है। एक तो बाबा की याद ही सुखदाई है, शिव बाबा को हम याद करते हैं, मन कैसी भी स्थिति में है मन की स्थिति बदल जाती है। तो बाबा की याद, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो मन को थोड़ा भी डिस्टर्ब करने वाली है, अब कई प्रकार की चिंताएं इंसान अपने जीवन में लेकर घूमता है, क्योंकि घर ग्रस्त में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो होती है कि कोई बीमारी हो गई किसी को, उसकी चिंता हो जाती है, खुद को बीमारी हो गई कोई तो उसकी चिंता लग सकती है, बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनका कैरियर बनाना है, अगर बच्चे ज्ञान में नहीं चलते तो उनकी शादी भी करनी है, या फिर उसके अनुसार कमाई कितनी है। हमारे समाज में कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत धन खर्च करना पड़ता है, अब समाज में रहते हैं तो उनको निभाना भी है, माना कितने तरह के बोझ महसूस करते हैं। फिर रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो जो दुनिया वालों के लिए है वही सब हम सबके लिए भी है। तो फिर उस समय हमको बाबा क्या कहते हैं, इन सब स्थितियों के होते हुए भी हमें फिक्र करनी है, हमें चिंता करनी है, हमें भविष्य की चिंता करनी है, हमारा जिम्मेवार कौन है। जो भी मेरा है वो सब किसका हो गया, अब बाबा का हो गया। तो जब हम तेरा करते हैं, ट्रस्टी हो जाते हैं, बाबा ने सभी प्रवृत्ति वालों को श्रीमत दी है, ट्रस्टी होकर के चलना है। जब हमने अपनी सब चिंताएं जो भी हैं, बाबा आप करण करावन हारो, हम सिर्फ निमित्त हैं, ये जो भी आत्माएं हमारे आसपास हैं हम इनकी सेवा के लिए निमित्त हैं, आपने मुझे निमित्त बनाया है, तो जो भी हो रहा है बाबा जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार है नहीं। वो जैसे मिसाल दिखाते हैं महाभारत में कि अर्जुन श्री कृष्ण के साथ था, और बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जब अर्जुन हार सकता था, पर क्योंकि श्री कृष्ण साथ थे, तो उसी में एक प्रसंग आता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया गया और धोखे से मारा गया। तो जैसे ही अर्जुन को पता चला तो उसी समय उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को ही जिंदा चिता में जला दूंगा। और जब कृष्ण ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, ये अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा कर ली। फिर उस दिन रात को सब शिविर में थे और सब सो रहे थे और कृष्ण जाग रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो अगले दिन का युद्ध है वो इतना आसान नहीं है, और अगर वो युद्ध नहीं जीता गया तो क्या परिणाम हो सकता है, तो वो पूरी योजना बना रहे थे उसकी। और फिर उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो देखा ये अर्जुन सो रहा है, तो कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अर्जुन कैसे सो सकता है, इसको युद्ध करना है कल और ये सो रहा है। तो उठाया उन्होंने कि अर्जुन तुम सो रहे हो, तुम भूल गए हो तुमने क्या प्रतिज्ञा की है। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण को, माधव मैं नहीं भूला हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप मेरे साथ हो, आप मेरी चिंता कर रहे हो, आप जाग रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो जब बाबा हमारे साथ हैं और सारी जिम्मेवारी बाबा की है, तो फिर हम बाबा के बच्चों को कोई भी बात की चिंता करने की क्या जरूरत है। चिंता आए किसको ट्रांसफर कर देना है, जैसे बच्चे होते हैं माँ बाप के साथ निश्चिंत रहते हैं, उनको पता है कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो कौन संभाल लेगा, माता पिता हैं वो संभाल लेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ कोई बॉडीगार्ड होता है तो वो बहुत निर्भय होता है कि मुझे किस बात का भय है, मेरे तो रक्षक मेरे साथ हैं, तो हमारा रक्षक कौन है और हमारा माता पिता कौन है, हमारा परम पिता कौन है। अगर हम भूल जाते हैं बाबा को, कई बार हम बाबा के बच्चे वो शक्ति को भूल जाते हैं, तब फिर ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हमारी खुशी गुम होती है, हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, हम माया के परवश हो जाते हैं। और जो ज्ञान का मनन चिंतन है, वो ज्ञान का मनन चिंतन कई बार कई भाई बहने कहते हैं बहन जी हमको टाइम ही नहीं है, मूल्य सुन लेते हैं उतना ही बहुत है, स्मरण करना उसकी गहराई में जाना, लेकिन अगर हम उसका स्वरूप नहीं बनते, ज्ञान का स्वरूप नहीं बनते, तो फिर कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को हलचल में ला सकती है। ज्ञान का मनन चिंतन हम कैसे करेंगे, बाबा ने हमें इतनी श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, सारा दिन में कोई एक स्मृति ले लो आप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मानो बहुत सारी स्मृतियां हैं और इतनी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं जो हम भूल चुके थे, बाबा ने हमें याद दिलाया हम ये हैं, हम वो भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हैं। तो उसकी थोड़ी गहराई में जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हूँ, क्या शक्तियां हैं मेरी, पता है ना सबको हमारी शक्तियां कौन सी हैं, तो समय पर वो शक्ति मेरी प्रयोग हो रही है, सहन शक्ति है मेरे अंदर, हम बाबा के बच्चे हैं, समाने की शक्ति है हमारे अंदर, परखने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, तो क्या मेरी ये शक्तियां समय पर काम आ रही हैं, या जब सहन करना है तब हम भूल जाते हैं, उस समय तो हम सामना कर लेते हैं, बाद में याद आता है अरे ये तो सहन कर लेना था, किसी ने मुझे दो शब्द कहे, दुनिया में लोग क्या करते हैं, संबंधों में आते हैं ना जब, तो संबंधों में ये सारी बातें, क्योंकि संस्कार स्वभाव भिन्न भिन्न है, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में ऐसा हो जाता है, कोई हमसे अपमानजनक व्यवहार कर देता है, किसी ने ऐसे दो शब्द कह दिए जो हमें चुभ गए, तो दुनिया में लोग टिक फॉर टैक करते हैं, जैसे को तैसा देना है, इसने दो बोला तो मुझे चार, और उसने अगर चार बोला है तो आठ, मुझे आठ देना है, और फिर अगर इसने दो लोगों के सामने मेरा अपमान किया तो मैं दस लोगों के सामने इसका करने वाला हूँ, मुझे इसका बदला कैसे लेना है उसकी पूरी प्लानिंग वो होती है। लेकिन हम बाबा के बच्चों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसी ने दो बोला तो मुझे भी चार बोलना है, क्या करेंगे, चार बोल के फिर याद करेंगे मुझे नहीं बोलने चाहिए थे चार, ये तो बाबा की श्रीमत नहीं है, ऐसे उसी समय हमें स्मृति में आ जाए कि मेरा कर्तव्य क्या है। अगर ये उसने मुझे दो चुभने वाले बोल बोले हैं तो मैं शांति की देवी हूँ, शांति का देव हूँ, मेरा कर्तव्य है उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, उसे शांति का दान देना, वो माया के परवश है। अगर वो क्रोध के वश है तो क्या मुझे भी क्रोध के वश हो जाना है। और जब हम कैसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रख लेते हैं तो उसको रियलाइज होता है, कहने से रियलाइज नहीं होगा, अगर अब उसको आप समझाने जाएंगे तो रियलाइज नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उस खड़ी सहन कर लिया, हम शांत रह गए, तब उसको अपने आप रियलाइज होगा कि जो मैंने कहा वो सही नहीं था और इनका व्यवहार तो फिर भी मेरे प्रति अच्छा ही रहा, तो आगे से मुझे भी ध्यान रखना है कि मेरा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम विश्व परिवर्तक का कार्य कर रहे हैं, जिसको बाबा कहता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तब हमने उसको प्रेरणा दी। और अगर हमने भी उसके जैसे शक्ति का प्रयोग कर लिया, तो ये उसकी गहराई में जब हम जाएंगे तब हमारा वो मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप होगा, यानी जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति कार्य करेगी। अभी यहां तो मुझे समाने की शक्ति चाहिए थी, हाँ, किसी ने मुझे कोई अपनी बात कही और मुझे वो बात किसी को नहीं कहना है। मानो ऐसी बात होती है, कोई राज की बात होती है कि अगर हमने वो बात किसी दूसरे को कह दी तो बात बिगड़ सकती है और फिर उसका असर हमारे संबंधों पर भी आ सकता है, पर हम नहीं समा सके उसको और हमने विस्तार से अपना उसमें जिसे कहते हैं नमक मिर्ची लगा के और भी दो चार बातें ऐड करके उसको चार लोगों को सुना दिया। फिर बाद में समझ में आया कि ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर संस्कार के वश हो जाते हैं क्योंकि पर चिंतन के संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं आत्मा के अंदर, और ऐसी बातें जो होती हैं वो ज्यादा चटपटी होती हैं सुनने सुनाने वाले, सुनाने वाले को भी मजा आता है और सुनने वाले को भी मजा आता है, जिसको कनरस कहते हैं। तो कनरस की आदतों का संस्कार तो हमारा 63 जन्मों का है और ये तो कथा कहानियां हो जाती हैं लंबी लंबी, अच्छा फिर ऐसा हुआ, अच्छा फिर उसने ऐसा किया और उसने ऐसा, तो इसका मतलब हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे। अंतर्मुखी होकर के, यानी बाबा कहता है व्यर्थ में भी मन न जाए, व्यर्थ से भी मुक्त हमारी स्थिति समर्थ रहे तब हम खुशी में रहेंगे। जितना हम समर्थ स्थिति बनाएंगे अपनी, और वो तभी बनेगी जब हमारा शुभ चिंतन होगा, जब हमारा श्रेष्ठ चिंतन होगा, और शुभ चिंतन श्रेष्ठ चिंतन का आधार ज्ञान है। वो ज्ञान रत्नों की वैल्यू हमें होनी चाहिए कि एक एक रत्न बाबा का जो दिया हुआ है वो लाखों रुपए का है। इस पर भी एक ऐसी छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक राजा कहीं दूसरे राज्य में जा रहा था, तो रास्ते में जंगल से गुजरा, गांव से गुजरा, तो उसको थोड़ा विश्राम करना था, तो देखा सामने एक झोपड़ी है, वहां रुका वो। और जो व्यक्ति था उसने उन राजा की बहुत आवभगत की, उसको खाना खिलाया, तो बहुत प्रसन्न हुआ उससे कि देखो इसने मुझे कितना अच्छी तरह संभाला। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या कमाते हो, तो उसने कहा कि मैं रोज का रोज कमाता हूँ, रोज का रोज खाता हूँ, इतनी ही मेरी कमाई होती है। तो राजा ने समझा कि गरीब है तो इसने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं राजा हूँ यहाँ का, मुझे इसको ऐसा कुछ देना चाहिए कि ये जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाए, कि ये कमाने की चिंता निकल जाए। तो राजा ने उसको कहा कि देखो पास ही एक बगीचा है मेरा, और वो बगीचे में कुछ वृक्ष हैं, चंदन के वृक्ष हैं, और वो मैं तुमको सौंपता हूँ, तुम उसे संभालो और उससे ही कमाई करो, तुम्हें जिंदगी भर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसे कह के वो चला गया। तो उसने देखा वहां जाकर के चंदन के पेड़ थे, एक बगीचा था वहां, तो उस वो चंदन से परिचित नहीं था कि चंदन क्या होता है, चंदन की लकड़ी कितनी वैल्यूबल होती है। उसके हिसाब से तो ऐसा था कि वो जंगल जाता था, लकड़ी काट के लाता था अपने चूल्हे में, लकड़ी जलाना और उससे खाना बनाना, इतनी ही उसके लिए उस लकड़ी की वैल्यू थी, या उसको बेच दिया जाए। तो उसने ऐसा ही करना शुरू किया कि वो लकड़ी काटता था वहां से, अभी उसको ज्यादा मेहनत करके लाना पड़ता था, अभी सहज उसको वो मिल गया और उसको उसने जलाना शुरू किया। तो कुछ समय के बाद जो राजा है वो फिर उस तरफ से गुजर रहा था, और फिर उसने सोचा चलो उससे मिलता चलता हूँ, अब तक तो उसकी हालत बदल चुकी होगी क्योंकि अब उसको चंदन का वो वन मिल गया है। तो वहां देखा तो अभी भी वो झोपड़ी में रह रहा है और ज्यादा उसकी दशा नहीं बदली है। तो राजा ने उसको पूछा कि तुमको मैंने वो वन दिया था उसका क्या हुआ, तो उसने कहा कि महाराज वो तो लकड़ी है और लकड़ी तो मैं जला करके और खाना वाना बनाता हूँ, कभी थोड़ा कोयला बनाता हूँ कमाने के लिए, उसका वो कोयला बेच करके आ जाता हूँ, उससे जो धन मिलता है उससे अपना खर्चा चलाता हूँ। तो राजा ने उसको कहा कि मैंने तुमको इतना मूल्यवान वो चंदन की लकड़ी होती है वो वन दिया, वो तुमने उसकी लकड़ी बेची होती तो तुम अब तक धनी व्यक्ति हो गए होते। और देखा वहां अब ज्यादा नहीं, सिर्फ दो चार वृक्ष ही बचे हैं, इतना सब काट के वो उसको जला चुका है, खत्म कर चुका है। तो जो वैल्यू उसको समझनी चाहिए थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम थी, इसलिए उसने उस वैल्यूबल चीज को भी ऐसे ही कौड़ी के भाव से गंवा दिया। तो कई बार बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं, उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू अगर हम इतना नहीं करते, उन्हें यूज नहीं करते, वैल्यू करने का अर्थ है कि हम उसे यूज नहीं करते, सुनते तो हैं लेकिन सुनते हुए भी उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो फिर यही होता है कि ज्ञानी होते हुए भी जैसे क्या कहेंगे, वो शब्द तो नहीं कहना चाहिए। तो जितना हम ज्ञान का स्मरण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, और अटेंशन देना पड़ेगा उसके लिए, अपने आप तो नहीं चलेगा, क्योंकि मन सांसारिक बातों में जल्दी चला जाता है, व्यर्थ की बातों में जल्दी चला जाता है, नेगेटिव बातों में जल्दी चला जाता है, छोटी छोटी बातों में मन को उलझाए रखना ये आदत है। लेकिन अटेंशन देंगे कि नहीं, इन बातों में नहीं, मन ज्ञान में रमन करे। क्या कहा बाबा ने आज मुरली में, उसके हम अपने तरीके ढूंढ सकते हैं, कैसे हमें मुरली को रिवाइज करना है, कैसे हमें उस पॉइंट को, जैसे बाबा कहते हैं पांच क, जैसे क की बात कहते हैं कि जो मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो भी क्यों क्या कैसे उसमें हम चले जाते हैं, तब बहुत व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए भी क्यों क्या कैसे हम यूज करें, कि बाबा ने ये बात क्यों कही, इसका क्या राज है, ये मेरे लिए किस तरह से उपयोगी है, कैसे मेरे जीवन में इसको लाने से परिवर्तन आएगा, तो वही हम यूज कर रहे हैं, वही प्रश्न हम ज्ञान के लिए करेंगे तो उस पॉइंट की हम गहराई में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम उसका विचार सागर मंथन करें, तो जितना उसमें रहेंगे उतना प्रसन्न चित्त होंगे। और फिर बाबा हमें कहते हैं जितना हम सेवा करते हैं, सेवा से हमें दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं हमें खुशी देती हैं। और हम सब जानते हैं जब भी कोई हमें सेवा की चांस मिलता है या ऑफर मिलती है और हम दिल से वो सेवा करते हैं, एक होता है कि निमित्त मात्र मेरी ड्यूटी है वो मुझे निभानी है, वो हमने उस भाव से किया, और एक दिल से बाबा की सेवा है और हम उसे दिल से करते हैं तो वो हमें खुशी देता है। जितना हम दूसरों को देते हैं उतना ही हमें मिलता है, देना है, खुशी हमें देनी है, जैसे कहते हैं सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, तो जो हम देंगे वो हमारे पास लौट कर आता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में हम दूसरों को भी, जिनसे भी हम संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें हम खुशी दें, और खासकर जो रूहानी प्रसन्नता है, जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं, वो एक छत्र छाया की तरह काम करते हैं। इसे कहते हैं कि एक छायादार वृक्ष होता है, कोई भी जो राही होता है जब वो उस छायादार वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसको वो छाया सुख देती है। ऐसे ही जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं, प्रसन्न होने का मतलब, खुश होने का मतलब ये नहीं कि कोई हम जोर जोर से हंसते हैं वो उसको हम खुशी कहेंगे, लेकिन चित्त प्रसन्न है, हमारा मन सदा प्रसन्न है, और यदि वो रूहानी प्रसन्नता है हमारी बाबा की याद से ज्ञान से जो मन की प्रसन्नता है, उनके संपर्क में जो भी आत्माएं आएंगी वो स्वतः ही, कैसे भी उनकी मन की स्थिति होगी, कितने भी वो उदास क्यों ना होंगे, कितने भी वो निराश क्यों ना होंगे, लेकिन वो भी स्वतः प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे, उनके मन की स्थिति भी बदल जाएगी। तो वो जैसे उसी तरह से है कि जैसे छायादार वृक्ष है और उसके नीचे कोई बैठा तो उसको भी वो प्राप्ति हो गई, वो वाइब्रेशंस उनको भी परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इतने प्रसन्न हैं कि हमारी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। और अब जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मन, खुशी का संबंध स्वास्थ्य से भी है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। अगर हम खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहना आसान है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं लाफर इज द बेस्ट मेडिसिन, कि जो व्यक्ति खुश रहता है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ये तो अब क्योंकि बहुत साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं इन चीजों के ऊपर, तो ये देखा गया कि जो खुश रहते हैं उनके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं। जैसे हम कहते हैं जो व्यक्ति चिंता में रहते हैं उनके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो रोग पैदा करते हैं। इसीलिए आज जो 70% बीमारियां हैं वो स्ट्रेस के कारण होती हैं, यानी टेंशन के कारण, चिंता के कारण, भय के कारण। आज के जो रोग हैं उन्हें मनोकायिक रोग कहते हैं, साइकोसोमैटिक रोग कहते हैं, तो सब आपने सुना हुआ है। तो वो बीमारियां जो हैं वो चिंता के कारण हो रही हैं क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे बन रहे हैं। ऐसे ही जब हम खुश रहते हैं तब हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, ये केमिकल्स बनते हैं जो हमें स्वस्थ करते हैं। और इसीलिए किसी को अगर इवन असाध्य बीमारियां भी हो जाती हैं, असाध्य बीमारियां माना जिसका कोई इलाज ही नहीं है, बीमारी हो गई तो वो थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर के उसको चलाते हैं, तो वो असाध्य बीमारियां भी जो हैं वो बीमारियां भी उससे ठीक हो जाती हैं। इसके ऊपर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी हुई जो रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, तो उसमें पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाती है मतलब इतनी कड़क हो जाती है कि आप अपनी पीठ को बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते हो। तो वो बीमारी उनको हुई और ये असाध्य बीमारी है, माना हो गई, माना जीवन भर उनको उनके साथ ही जीना है और ही बढ़ती जाएगी, दवाइयों से कम भी नहीं होगी। ऐसी बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं मेडिकल साइंस में। तो डॉक्टर ने उनको कह दिया कि आपको इसी बीमारी के साथ जीना है और इसी के साथ ही आपकी मृत्यु होगी। फिर उन्होंने मन में सोचा कि मुझे इस बीमारी के साथ नहीं जीना है, जैसे कोई अपने मन में निश्चय कर लेता है। और उन्होंने जो भी वो पेशे में थे, साइंटिस्ट थे पेशे में, तो उन्होंने अपने आप के पेशे से 6 महीने की छुट्टी ले ली और सारा दिन घर में वो जो हंसने वाले फिल्म होते हैं, हंसाने वाली फिल्म जिसको कॉमेडी कहते हैं, कॉमेडी फिल्म्स देखना या इस तरह के ही जो जोक्स वगैरह हैं वो सुनना, जिससे कि वो सारा दिन खुश रह सकें, हंसते रहें, मतलब मन पर उस बीमारी का असर ना आए। ऐसे होता है कई बार ऐसे सुनते हैं कि ये बीमारी हो गई तो इतनी चिंता हो जाती है कि पूरा बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे बीमारी का स्वरूप ही बन जाते हैं कि अब ये बीमारी हो गई, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ऐसी कई बीमारियां, जैसे किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है या किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, ये सब बीमारियां तो असाध्य हैं, माना हो गई, माना जिंदगी भर इंसान को उसके साथ जीना ही है, ये ऐसी बीमारियां हैं। तो बहुत लोग कई बार इसमें बहुत चिंता में चले जाते हैं कि अब ये बीमारी हो गई, अब क्या होगा, अब कैसे जीवन कटेगा अब। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचना है, जो बाबा भी हमें सिखाते हैं कि बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है। अगर मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो शरीर की बीमारी कितनी भी गंभीर है वो क्या हो जाएगी, सूली से कांटा, यानी उस बीमारी का दुख दर्द हमें महसूस नहीं होगा। और अगर मन की स्थिति प्रसन्न है तो वो जल्दी ही हम उससे मुक्त भी हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनके साथ, 6 महीना उन्होंने ये किया और फिर बाद में जाकर के चेकअप कराया तो पता चला कि वो बीमारी तो जड़ से खत्म हो चुकी है। और ऐसे ही पिछले बाबा के टर्न में, हाँ ये तो प्रैक्टिकल और भी प्रैक्टिकल मिसाल कि बाबा के बच्चे और कैसे असाध्य बीमारी के ऊपर विजय पा ली। तो पिछले बाबा के टर्न में अपने एक समर्पित भाई जो काफी वर्षों से समर्पित हैं बाबा के यज्ञ में, उन्होंने अपनी बीमारी पर विजय की सिल्वर जुबली मनाई। 25 साल पूरे हो गए और बीमारी क्या, ब्रेन ट्यूमर। वो 1993 में उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और ब्रेन ट्यूमर भी एक नहीं था, तीन चार थे। तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं हो सकता तो जितना समय व्यक्ति निकाले, ऐसा कह दिया, फाइनल जवाब दे दिया उनको कि 4 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये बात फिर दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी थे उस समय, तो उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी से ये सब कहा क्योंकि समर्पित भाई थे। तो दादी ने कहा ठीक है, जितना भी समय है आपके पास आप बाबा के घर मधुबन में आकर रहो। तो मधुबन में आकर के रहने लगे ऊपर पांडव भवन में, तब तो ये शांतिवन अभी शुरू नहीं हुआ था। तो उस समय बाबा की सीजन चल रही थी और उनको थोड़ा असर भी आ गया था उसका, यानी थोड़ा मुंह टेढ़ा और गर्दन टेढ़ी हो गई थी, एक हाथ अपने हाथ से काम नहीं कर सकते थे, चल भी अपने आप नहीं सकते थे, लोगों को मदद करके उनको चलाना पड़ता था। तो बाबा की सीजन चल रही थी तो बाबा का टर्न था, दादी ने बाबा को सुनाया उनको बाबा से मिलाने के लिए। तो 2-3 लोग उनको स्टेज पर लेकर के आए कि बाबा से मिल लें। तो बाबा ने दृष्टि दी तो वो भाई खुद ही सुना रहे थे अपना अनुभव कि जैसे बाबा ने दृष्टि दी उनको लगा जैसे कोई लाइट आ गई उनके अंदर एकदम। और उस समय तो 2-3 लोगों ने उनको पकड़ के खड़ा कर रखा था बाबा के सामने, लेकिन वो एकदम गिर गए। तुरंत रिएक्शन क्या हुआ कि वो गिर गए। तो जैसे ही गिर गए तो दादी के हाथ में एक फूल था गुलाब का, तो दादी ने उनके सिर पर घुमाया और फिर बोला उनको कि उठो सुरेंद्र उठो, ऐसे दादी ने प्यार से बोला। और बोलते हैं पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि मैं सचमुच उठ खड़ा हुआ, जो 2-3 लोगों के सहयोग से खड़ा हो रहा था वो एकदम सीधा मैं खड़ा हो गया और मेरी गर्दन भी सीधी हो गई। और स्टेज से उतर करके आ गए अपने आप और बोला उसके बाद तो बस मैं ठीक ही होता गया। और आज वो सुना रहे थे कि 25 साल हो गए इस बात को, कहां डॉक्टर कहता था कितने महीने निकाल ले तो बहुत है। उन्होंने फिर किया ट्रीटमेंट, किया होम्योपैथिक सुनाया उन्होंने, होम्योपैथिक और कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किए, बस इतना ही। आज भी वो वही ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि एलोपैथिक में तो उसका कोई इलाज नहीं। बीच में एक बार उन्होंने जांच भी कराई तो पता चला अभी भी ट्यूमर है, लेकिन कैसे बाबा उनको चला रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी इस बीमारी में, जब भी जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी हो गई और मैं कभी भी जा सकता हूं, मैंने कभी दुख महसूस नहीं किया, मैं हमेशा तैयार था और ही खुशी में और ही आनंद में कि अब मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाने का मेरा टाइम आ गया है और बाबा के पास वतन में मैं जाऊंगा, बाबा से मिलूंगा, डायरेक्ट मिलूंगा। मतलब उस चीज को उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया और कहा कि 2:30 बजे उठ करके मैंने योग करना शुरू किया, 2:30, 3, इससे देरी से कभी नहीं उठते। तो वो योग का बल उसका भी प्रयोग किया, जो थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट दूसरी पैथी से कर सकते थे वो किया, लेकिन बाबा की शक्ति से आज वो असाध्य बीमारी के ऊपर उन्होंने विजय पा ली। और अभी अभी हम सब सुनते ही हैं कि यहाँ हार्ट पेशेंट्स के लिए अपने यहाँ कैंप चलते हैं और वो हार्ट पेशेंट्स को पूरा राजयोग जीवन शैली सिखाई जाती है। और भले वो अज्ञानी होते हैं, जब वो कैंप्स में आते हैं तो वो सिर्फ अपने हार्ट की बीमारी के इलाज के हिसाब से ही आते हैं, लेकिन 6 महीना 1 साल जब वो उस पूरी जीवन शैली को फॉलो करते हैं, रोज योग करते हैं, तो जिनके ब्लॉकेजेस होते हैं, 100% ब्लॉकेजेस भी होते हैं, उनके भी वो ब्लॉकेजेस ठीक हो जाते हैं, उनको बाईपास सर्जरी की बजाय नेचुरल बाईपास हो जाता है और कितने हजार मरीज जो हैं वो उससे अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो ये प्रमाण है, भले बाबा हमें कहता नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूं और मैं बीमारी ठीक करता हूं, क्योंकि बाबा को पता है कि हर एक आत्मा के कर्म के हिसाब किताब अपने हैं और हम सबको अपने कर्मों के हिसाब किताब तो चुकतू करने ही है, बाबा उसमें हस्तक्षेप करता नहीं है। लेकिन ये हमारा अपना योग बल है, योग की शक्ति हम कितना यूज करते हैं, उस योग का प्रयोग हम कितना करते हैं, जितनी हम हिम्मत रखते हैं उतनी हमें बाबा की मदद महसूस होती है। लेकिन करना क्या है, बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है और सदा मन खुश और स्वस्थ रहे, बीमारी में भी उस दुख दर्द कष्ट को महसूस नहीं करें, तो फिर उससे बहुत जल्दी हम मुक्त हो जाएंगे। वो बीमारी जो है, बाबा कई बार नहीं कहते हैं कि जैसे तूफान तोहफा बन जाते हैं, अगर जीवन में हमारी सोच जो है वो ज्ञान युक्त होती है तो फिर तूफान हमें तूफान नहीं लगता है, वो जीवन में हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन हो जाता है। तो ऐसे ही जो तन के भी पेपर आते हैं कई बार, वो हमें संपूर्णता की ओर ले जाने के, यानी इस देह से उपराम करने के या कर्मातीत बनाने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह आत्मा को अपनी देह से होता है, इसीलिए मृत्यु का भय होता है ना। और हमें तो बाबा ने मर्जीवा जीवन दे दिया, सब मर्जीवा जीवन यानी जीते जी। अभी दो तीन दिन पहले ये मुरली थी कि मर्जीवा है जीते जी मरे हुए, जैसे बाबा ने खुद के लिए भी कहा कि मैं तो इस शरीर का आधार लेता हूँ, उसमें थोड़े समय के लिए आता हूँ, मैं तो सदा ही मरा हुआ हूँ क्योंकि मैं तो सदा ही इस देह से न्यारा हूँ और तुम बच्चों को भी मैं यही सिखाता हूँ, जीते जी न्यारा होना। तो हम कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचते, हमने अपनी दादियों को देखा और ऐसा ही गुजार दादी के जीवन का भी मिसाल है कि दादी ने भी कैसे बीमारी के ऊपर जीत पाई, जबकि डॉक्टर ने उनको भी टाइम दिया था। दादी 1987 में गुजार दादी को कैंसर हुआ था, तब डॉक्टर ने 2 साल बोला था और आज 30 साल हो गए हमारी दादी ने योग बल से उस बीमारी पर जीत पाई। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में बहुत मिसाल है कि हम वो डॉक्टरों के जो स्टेटमेंट है उसको पूरी तरह से गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो जितना खुशी की खुराक खाते रहेंगे, हर दिन जो बाबा ने हमें याद का बल दिया है, याद की शक्ति दी है और जो हमें ज्ञान का बल मिला है, उसकी जो शक्ति है, हमारे अपने गुणों की धारणाओं की जो शक्ति है, वो शक्ति से सदा ही हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी जीवन का अनुभव करते हैं। ओम शांति।
आगे की